मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। दोस्तों, हो सका तो मैं आज आप सबसे प्री 2023 के एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले कुछ जो दूसरी खबरें हैं, आइए उन पर एक छोटी सी नज़र मार लेते हैं। यहाँ आपको अपने कान मुझे देने होंगे क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे पढ़ नहीं रहे हैं। एक न्यूज़ आपने अखबारों में भी पढ़ी होगी, बहुत ही छोटी सी खबर है, रेडियो न्यूज़ में तो खैर वो खबर है और होनी भी चाहिए, वो ये कि हिमाचल प्रदेश का जो धर्मशाला नामक स्थान है, आपने धर्मशाला नाम जरूर सुना होगा, नहीं सुना हो तो थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए कि यह स्थान किस मायने में चर्चा में आता है। मैं जानबूझ करके यहाँ नहीं बता रहा हूँ। देखिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं आपके माइंड को एक्टिवेट करूँ, चाहे वो प्री एग्जामिनेशन हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, आपके माइंड का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस बात के लिए आप माफ़ करेंगे कि मैं अब चीज़ें आपको कुक्ड फॉर्म में बिल्कुल नहीं दूंगा। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी जो कुक्ड में मैं दूंगा, और मैं चाहूँगा कि मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ उन्हें फिर आप आगे कुक्ड करें। मुझे तो जो देना होगा वह मैं दूंगा ही, जैसा कि मैं देता रहा हूँ, लेकिन उसके आगे मैं आपको एक होमवर्क के रूप में कुछ और चीज़ें दे दिया करूँगा, और जब आप उस पर विचार करेंगे तब कहीं जाकर आपका जो माइंड है वो एक्टिवेट हो सकेगा। अभी मैंने धर्मशाला की बात कही, वहाँ जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं स्टेट के, उनका सम्मेलन होने जा रहा है, हो रहा है, और प्रधानमंत्री हमारे उसकी अध्यक्षता करेंगे। अब आप देखिए कि जब आप चीफ सेक्रेटरी सम्मेलन के बारे में अखबारों में पढ़ते हैं और आपको नहीं मालूम कि चीफ सेक्रेटरी क्या होते हैं, ये सम्मेलन क्यों महत्वपूर्ण है, तो स्वाभाविक है कि आप उस खबर को पढ़ेंगे और किनारे कर देंगे। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि नहीं चीफ सेक्रेटरीज क्या होते हैं, तब आपको उस सम्मेलन का महत्व समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जो चीफ सेक्रेटरीज होते हैं वो स्टेट के, हर स्टेट में एक चीफ सेक्रेटरी होता है। देखिए, शब्द क्या है, चीफ सेक्रेटरी। स्टेट में जितने भी मंत्रालय होते हैं उन सभी मंत्रालयों में सचिव होते हैं, केंद्र में भी होते हैं, लेकिन स्टेट में जो टॉप सचिव होते हैं उनके अलग अलग नाम है, कहीं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, कहीं कुछ और नाम दे दिया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर हम सचिव मान लें। सचिव का मतलब है कि उस मंत्रालय का प्रमुख। देखिए, वैसे तो प्रमुख मंत्री होते हैं, लेकिन जो कार्यकारी प्रमुख के ऊपर अगर हम आते हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो वो होते हैं सचिव। तो मान लीजिए कि किसी राज्य में 20 मंत्रालय हैं, तो उसके 20 अलग अलग सचिव हैं। तो इन 20 सचिवों के ऊपर जो सचिव एक बैठा हुआ है, जो इन 20 सचिवों को निर्देशित करता है, वह है चीफ सेक्रेटरी। यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो स्टेट के, आप यूं कह लीजिए, टॉप ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेट। हालांकि व्यवस्था यही की गई है कि एक स्टेट है, उस स्टेट में जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन आईएएस ऑफिसर्स में जो सबसे सीनियर होगा उसे चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। चीफ मिनिस्टर के ऊपर होता है कि वे किसे चीफ सेक्रेटरी बनाते हैं, लेकिन जब वे चीफ सेक्रेटरी बनाते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं, तो डेफिनेटली सीनियरिटी का ध्यान जरूर रखा जाता है, और खासकर जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स को जो भी निर्देश देने होते हैं चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से देते हैं। आप यूं कह लीजिए कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री, वे अपने राज्य के प्रशासन का संचालन चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से करते हैं, और केंद्र और राज्यों के बीच में भी जो कड़ी का काम करने वाली जो एजेंसी होती है, जो पर्सन होता है, जो अधिकारी होता है, वह चीफ सेक्रेटरी ही होता है। मुझे लगता है कि मेरी इतनी बात सुनने के बाद शायद अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये जो सम्मेलन है ये महत्वपूर्ण सम्मेलन है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के बारे में कैसे महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी इस सम्मेलन में डेफिनेटली अपना विजन रखेंगे कि हम देश के लिए क्या चाहते हैं, क्या क्या हम योजनाएं लागू कर रहे हैं, अभी क्या कर चुके हैं, उनमें से किसे इम्पोर्टेंस देनी है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली इस तरह की बात वो रखेंगे। और जिन टॉपिक्स पर वो बात करेंगे, सीधी सी बात है कि वो टॉपिक्स फिर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, राइट? तो इस सम्मेलन में जो भी प्रधानमंत्री जी बात करेंगे या आखिरी में जो निष्कर्ष निकल करके आएंगे, उन पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। रेडियो न्यूज में एक छोटी सी खबर थी जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि गुजरात का जो सूरत शहर है, वो पहला ऐसा शहर बन गया है जिसका जो मार्ग है, रोड है, वो स्टील स्लैग से बना हुआ है। स्टील स्लैग, यानी कि जो स्टील है, जब स्टील से कोई चीज बनाई जाती है ना, तो उससे आप यूं कह लीजिए कि बुरादा जैसा निकलता होगा, उस बुरादे से और दूसरी चीजें उसमें मिला करके और रोड बनाई जा रही हैं। तो पहला ऐसा शहर सूरत बना है, बस दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिए। दोस्तों, आज के अखबारों में अग्निवीर के बारे में और काफ़ी कुछ लिखा गया है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। टीवी न्यूज़ पर भी कल इसके बारे में काफ़ी बातें हुई हैं, इसको लेकर के अब काफ़ी चर्चा भी शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पर आर्टिकल्स आएंगे, एडिटोरियल कमेंट्स भी आएंगे, तो इस पर मैं ज़्यादा बातें करने नहीं जा रहा हूँ। मैंने कल आपको जो मुख्य तथ्य थे वो बता दिए, धीरे धीरे हो सकता है कि कुछ और तथ्य उसमें जुड़ते चले जाएं। जैसे एक तथ्य यही है कि फिर केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि जो हमारे जो केंद्रीय बल होते हैं उनमें जो अग्निवीर होंगे 4 साल के बाद 75% बाहर आ जाएंगे। 25% को तो सेना में रख लिया जाएगा, 75% जो बाहर आ जाएंगे, तो ये जो बाहर आएंगे इनको इन सेवाओं में प्राथमिकता दी जाएगी, इस तरह की बातें हो रही हैं। केंद्र सरकार ये भी कह रहा है कि दूसरी सेवाओं में भी इनको प्राथमिकता देने की बात कही जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये बाहर आ जाएंगे तो बिल्कुल कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे और एकदम से बेरोजगार हो जाएंगे, बल्कि आपने न्यूज़ में ये भी सुना होगा कि जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है उसने बकायदे इनके लिए कोर्स की भी एक शुरुआत करने की बात कही है कि वो 3 साल का कोर्स शुरू करेगा। 1 साल में अगर आप करेंगे तो आपको ये डिग्री मिलेगी, 2 साल में ये डिग्री मिलेगी, और जब 3 साल का कोर्स आप पूरा कर लेंगे तो आप बकायदे ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो अब आपको ये जो डिफरेंट जो इसके एंगल्स हैं उन पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए। सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुझे जो एक एंगल महत्वपूर्ण लगता है और इस पर आपको थोड़ा विचार करना चाहिए, इसकी छूट मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये कि जैसे जब अग्निवीर योजना की घोषणा की गई तो जो कांग्रेस पार्टी है उसने जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट इस तरीके का था कि ये समाज का सैन्यीकरण किया जा रहा है। समाज का सैन्यीकरण कहने का उनका मतलब था कि जो लोग 4 साल की सेवा के बाद, सेना की सेवा के बाद लौटेंगे तो वो बेरोजगार हो जाएंगे, और चूंकि इनके पास सैन्य का साहस है, बंदूक पिस्तौल चलाना भी इनको आता है, शारीरिक रूप से भी ये सक्षम हैं, तो जब ये समाज में लौटेंगे और बेरोजगार रहेंगे तो ये एक प्रकार से समाज में अव्यवस्था पैदा कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो दिमाग है वो साहसपूर्ण है और इन्हें बंदूक गोली तब पिस्तौल ये सब चलाने आते हैं। तो इस तरह से हमारा समाज धीरे धीरे सैन्यीकरण की ओर बढ़ेगा, ये कांग्रेस का स्टेटमेंट था। और बाद में फिर कल कुछ और सेना के जो रिटायर्ड ऑफिसर्स रहे हैं, जो बहुत ही सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं, उनमें भी एक दो लोगों ने यह बात कही है। मैं होमवर्क के रूप में यहाँ बस आप सबको इतना काम दे रहा हूँ कि आप अपने लेवल पर इस पर विचार करें कि यह जो आशंका है, आप आउटराइट रिजेक्ट मत कीजिए, तर्कपूर्ण तरीके से सोचिए कि यह जो आशंका है कितनी सही है कितनी गलत है, और दोनों में से किसी भी एक का पक्ष लेने के बाद फिर आप अपनी बात के समर्थन में 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स दें। इस तरह का आप होमवर्क कीजिए, आपको मजा आएगा, और डेफिनेटली आगे चल करके अभी अखबारों में जब और आपको पढ़ने को लिख में मिलेगा तो फिर आप अपने को तौल सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपने जो बातें सोची थी वो कितनी सही है कितनी गलत है, कौन कौन सी बातें आप नहीं सोच पाए, क्यों नहीं सोच पाए। दोस्तों प्लीज़ इस तरह से आप लगातार अपने को इवेल्युएट अब करते चले। आज के अखबार भरे हुए हैं, चैनल्स पर भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि 5G स्पेक्ट्रम के नीलामी की घोषणा सरकार ने कर दी है। 5G स्पेक्ट्रम, इसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, है ना। 5G स्पेक्ट्रम की जब नीलामी होगी, ठीक है, उसकी अपनी प्रक्रिया होगी, वो अर्थशास्त्र का भी आपके लिए इतना बड़ा हिस्सा नहीं है जितना कि ये थोड़ा सा साइंस का हिस्सा है, क्योंकि अब स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा अननोन सा टॉपिक नहीं रह गया है। जो 5G स्पेक्ट्रम है इसके आने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से गति मिल सकती है, इस पर आप चाहें तो एक छोटा सा नोट तैयार कर लें। जैसे ये माना जा रहा है कि जब ये 5G स्पेक्ट्रम आ जाएगा तब जो स्पीड है, इंटरनेट की जो स्पीड है, लगभग 10 times बढ़ जाएगी, और जो आप डाउनलोड करते हैं कोई भी चीज़ इंटरनेट से तो उसकी भी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी, यहाँ तक कि एक जो मूवी है वो आप 20 से 25 सेकेंड में डाउनलोड कर सकेंगे। फ्यूचर के जो बहुत सी योजनाएँ हैं इससे जुड़ी हुई वो इसी पर डिपेंड करती है, जैसे ड्राइवरलेस कार तो जो ऑटोमेशन है उसका, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। नेटवर्क कंजेशन हो जाता है कि नेटवर्क नहीं मिल रहा है, बफरिंग हो रही है, लोडिंग की समस्या है। तो जब 5G शुरू हो जाएगा नेटवर्क, तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। और यही बात मैं आपको अग्निवीर योजना के बारे में भी बताना चाहूँगा। ढेर सारी बातें कही जाएंगी, ढेर सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, उसमें से बस जो थोड़ी सी ज़रूरी बातें हैं बस आप उन्हें नोट कर लें। तो दोस्तों, ये थी कुछ खबरों के बारे में बातें। अब मैं प्री 2023 के बारे में बस थोड़ी सी ही बातें करना चाहूँगा, क्योंकि वक्त नहीं है। मैं आप सबके माइंड को पता नहीं कितना पढ़ पा रहा हूँ या नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे बातें समझ में आ रही हैं, अभी तक जो समझ में आई हैं, कि आप सब 2023 की तैयारी को लेकर के बहुत ज़्यादा घबराहट में हैं, निराश से भी हैं। और अगर आपकी ये घबराहट है और ये निराशा है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत ही अव्यावहारिक बात है, क्योंकि इस बार जिस तरह का क्वेश्चन पेपर आया है, उस क्वेश्चन पेपर ने हम सबको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर तो कर ही दिया है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, रास्ता निकलेगा, इतना आप विश्वास करें। फिलहाल मैं ज़्यादा कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ, शायद मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि आप जिस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे थे, प्लीज़ अभी आप उसी तरीके को कंटिन्यू करें। यानी कि आपके पास एक सिलेबस है, उसी को लगातार आप फॉलो करते रहें। अभी आपके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, और केवल अभी की बात नहीं, आगे भी आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। जो उसमें एड ऑन करना होगा, उस पर हम लोग आगे चल करके विचार करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस 7 से 21 अक्टूबर के बीच में होने वाली हैं। इसके लिए आनंद कुमार ने, जो गांव खुटौना के हैं, जिला मधुबनी बिहार के, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आनंद, आपका मैं अकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं, नेहा सिंह भोजपुर बिहार से और आदित्य सोनी रायपुर छत्तीसगढ़ से, आपका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।